పద పుణ్యపయోనిదిన దోషదహన గుణ గహన ఘన హరి కరి హరి అర్హం స్వానుభూతి రమణి రమణ జగనాయక జయవన్ సిద్ధ శుద్ధ సాధిత సహజ స్వరస సుధార సభార్ సమయ సార శివ సర్వగత నమత హోహు సుఖకార్ జై నీ బాణీ వివిధ విధి వరణత విశ్వ ప్రమాణ స్యాత్పదముంద్ర సాహిత హర కరహు సకల కళ్యాణ్ మే నమో నగన జైన జన జ్ఞాన ధ్యాన ధన లీన్ మే నమాన విన దాన ధన ఏన హీన తన చీన్ ఇహ విధి మంగళ కరణ తే సబ విధి మంగళ హోత ఉదంగల దూయ సబ
కరణానియోగ పరిచయ పుస్తక హై అభి ఇస్కే ఆధార్ సే హమ్ అభి గుణస్థానో కా గమనాగమన్ సీఖ రహే థే గమన్ యానీ కౌన్ సే గుణస్థాన్ సే కౌన్ సే గుణస్థాన్ మే जाता है जीव उसको कहते गमन और आगमन यानी कहाँ कहाँ से उस गुण स्थान में आता है उसको कहते हैं आगमन। तो यह जीव अनादि से ही कौन से गुण स्थान में था या है पहले गुण स्थान में इसका नाम क्या है अभी सभी गुण स्थानों के नाम याद है बोले पहला दूसरा ऐसा सारा यानी क्रम से बोलते जाए नंबर लेने की जरूरत नहीं है मिथ्या तो साधन ऐसे साधन सम्यक हाँ सम्यक बस हाँ वेरी गुड। सबको याद है चित्रा जी आपको बोलिए बराबर ऐसे ये 14 गुणस्थान हमने देखे। अब यहाँ से जो पहले गुणस्थान वाला जीव अनादि से जीव मिथ्यात्वी होता है और फिर जब उसको जिनेन्द्र कथित उपदेशों का जिनेन्द्र कथित तत्वों का उपदेश प्राप्त हो जाता है किसी गुरु से किसी को शास्त्र के द्वारा या तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि सुनकर तो उसको अपने स्वरूप का एहसास होता है उस पर विचार करता है वो सारा कैसे समय को प्राप्त करता है हमने देखा था। तो पहले से चौथे में जाता है तो सबसे पहले जो समय हो जाता है निख्यात्व अवस्था में से निकलकर जो समय हो जाता है तो पहले में पहले उसको औपशमिक सम्यक्त होता है उसी को प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। कोई जीव दोबारा मिथ्यात्व में जाए और फिर मिथ्यात्व में से सम्यक्त में आए तो भी उसको प्रथमोपशम ही कहेंगे। ऐसे नहीं कि दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार किया तो उसको द्वितीयोपशम कहेंगे ऐसी बात नहीं। जब जब मिथ्यात्व में से सम्यक्त आता है उपशम करके जो आता है क्योंकि कभी कभी मिथ्यात्व में से डायरेक्ट सोक्षम करके भी सम्यक्त्व में हो सकता है जो पहले सादी मिथ्या दृष्टि हो तो कि जिसकी सत्ता में तीन टुकड़े हैं वो डायरेक्ट सोक्षम भी कर सकता है परंतु उपशम के साथ जो आएगा मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में उसको औपशमिक सम्यक्त्व होता है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर मुहूर्त है आपके खाली उसके पश्चात सम्यक्त्व बना रहे तो उसको सम्यक प्रकृति का उदय होता है और उसको क्षयोक्षम या वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं। वेदक ऐसा भी शब्द शास्त्र में आता है। जब ये क्षयोक्षम सम्यक दर्शन पूर्वक ही आगे क्षायिक होगा कि ऐसा जो चौथा पांचवा छठा सातवा गुण स्थान वाला जो कोई जीव तीर्थंकर या केवली के पाद मूल में, क्योंकि वहां उसकी विशुद्धि अधिक हो सकती है, तो वहां वो साइट सम्यक को प्राप्त कर सकता है। तो यानी स्त्रियों को भी हो सकता है, चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ग की जो स्त्रियां है आर्यखंड की महिला, उनको भी साइट सम्यक को हो सकता है। तो ये सम्यक्व के तीन भेद हमने देखे। तो पहले में से ऊपर जो जाएगा, गमन पहले देखते हैं ना, पहले से नीचे कहाँ जाएगा, नीचे कुछ है नहीं, वो नीचे ही है, तो ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो कहाँ कहाँ जाएगा बोलो, चौथे में जाएगा। पांचवे मन जाने वाला कौन होगा, कंडीशन क्या है पांचवे, द्रव्यलिंगी श्रावक अनुव्रत लेना चाहिए, या द्रव्यलिंगी मुनि भी जा सकते हैं, परंतु मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, द्रव्यलिंगी श्रावक अनुव्रत तो होने ही चाहिए। महाव्रती भी जाए उसमें कुछ नवल नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब पहले से चौथा, पहले से पांचवा, और छठवे में नहीं जाएगा, वो उतरने का गुणस्थान है, चढ़ने का नहीं है। तो पहले से सातवे में कौन जावे, द्रव्यलिंगी मुनि। सातवें में जाते वो भावलिंगी बनेंगे, परंतु जाने के पहले कंडीशन क्या है, द्रव्यलिंगी होना, यानी प्रतिज्ञा पूर्वक ये सारे 28 मूल गुण वगैरह धारण करना, जिन दीक्षा लेना, ये आवश्यक है। तो और कहाँ जा सकता है पहले वाला, तीसरे में कौन जाएगा, साधी निचला दृष्टि की, जिसकी सत्ता में तीन दशम मूल के तीन टुकड़े पड़े हुए है, वो डायरेक्ट पहले से तीसरे में जा सकता है। अब पहले में आ कहाँ से सकता है, कहाँ से वो आएगा, सातवें में से आएगा क्या, क्योंकि सातवें में से डायरेक्ट नीचे के गुणस्थानों में नहीं जाता, तो कहाँ से आएगा, हाँ छह पांच चार तीन दो हर जगह से डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि वो क्रम से उतर कर पहले में आना पड़े, तो ये सर जा सकता है। ये तो पहले गुणस्थान का हमने देखा, गमन और आगमन। अब दूसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान का नाम है साचागन सम्यक्व। साचागन सम्यक्व, साचागन ने विराधना की है, किसकी विराधना, सम्यक्व की विराधना की है। इसका अर्थ हुआ उसके सम्यक्व को प्राप्त हुआ था, और सम्यक्व के काल में, औक्षणिक सम्यक्व के काल में ही अनंतानुबंधी कोई क्रोधमान माया लोभ के परिणाम हुए उस जीव को, और वो वहां से सम्यक्व से भ्रष्ट होकर अभी गिर रहा है, ऊपर से छूटा, अब नीचे मिथ्यात्व तक नहीं पहुंचा, तो बीच में कहां है वो, उसका दूसरा गुणस्थान चल रहा है। तो उसने काल तक उसको दूसरा गुणस्थान है, उसको कहते हैं साधन या साधन सम्यक्व। तो ये गिरने वाला ही गुणस्थान है, कोई जीव पहले से दूसरे में नहीं जाता। तो दूसरे में से जाएगा कहां कहां, पहले गमन देखते ना, तो दूसरे से गमन कहाँ है, अकेले पहले में, ऊपर जाएगा नहीं, और वहाँ आता कहाँ कहाँ से है, हाँ तीसरे से नहीं, ख्याल में है ना, क्योंकि तीसरे से क्यों नहीं आता, क्योंकि औक्षमिक सम्यक से ही गिर कर आता है, तो तीसरे वाला तो औक्षमिक सम्यक से है नहीं है। पहली कंडीशन दूसरे में आने वाले की कि औक्षमिक सम्यक्ति होना चाहिए, जैसे हमने प्रथमोक्षम शब्द सुना है, वैसे शास्त्र में और एक आता है कि द्वितीयोक्षम, द्वितीयोक्षम यानी जो अभी क्षोक्षम सम्यक दृष्टि कोई है और उसको उक्षम श्रेणी चढ़नी है, आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां गुणस्थान प्राप्त करने जा रहा है, तो उसके पहले क्षोक्षम सहित तो वो नहीं श्रेणी चढ़ता, क्योंकि श्रेणी चढ़ना यानी अत्यंत विशुद्ध 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 परिणाम होना, क्षोक्षम वाले को सम्यक प्रकृति का उदय होने के कारण इतनी विशुद्धि नहीं बन पाती, तो इसलिए उसके पहले क्या करता है कि उसको भी उपशमित कर देता है। तो जब ये श्रेणी के पहले जब दोबारा उपशमित होता है क्षोक्षम में से, फिर औक्षमिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसको कहते हैं द्वितीयोक्षम, यानी उस काल में, वो भी उपशम काल है ना, सम्यक्व का उपशम है और चढ़ते चढ़ते चारित्र का भी उपशम करेगा, चढ़ने के पहले वो औक्षमिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसको कहते द्वितीय औक्षम सम्यक, तो ऐसे वो चढ़ेगा फिर कहाँ कहाँ से, सातवें से आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, फिर ग्यारहवें के बाद दस, नौ, आठ, सात, छह क्रम से आए, तो हो सकता है उस छह में से वो डायरेक्ट दो में आ सके द्वितीय उपक्रम वाला, या छह वाला फिर पांच चार तक भी आ सकता है द्वितीय उपक्रम वाला उतर से, और फिर वहां से गिरकर दूसरे गुणस्थान में और फिर मिथ्यात्व में भी जा सकता है। यानी कैसे परिणाम देखो जीव के, ग्यारहवा गुणस्थान पूर्ण वितरागी हुआ था, और यदि वहां से छूट जाए तो मिथ्यात्व तक भी जा सकता है, फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी घूम सकता है संसार में। तो ये दूसरे गुणस्थान का हमने देखा। तीसरा गुणस्थान है, पहले गमन देखते हैं, ऊपर कहाँ से कहाँ जाएगा, पांचवे में नहीं जा सकता, अकेले चौथे में, और नीचे ओनली फर्स्ट। तो ये तीन गुणस्थान तक तो हमने देखे, अब आगे आज चौथा गुणस्थान का देखते हैं, गमनागमन। अभी आसान लगता है पहले, हाँ तीसरे में आगमन कहाँ कहाँ से आ सकता है, सिक्स, फाइव, फोर, और नीचे से पहले में से कौन सा आएगा, शादी मिश्रा ऋषि, हमने देखा था ना पहले वाले का गमन, वो तीसरे वाले का आगमन है, तो शादी मिश्रा ऋषि पहले से भी तीसरे में आ सकता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, सब बात समझ में आ गई, हाँ तो चलिए, हाँ यहाँ तक समझ में, अभी आगे बढ़ेंगे। चौथे गुणस्थान का गमनागमन, अभी चौथे से कहाँ कहाँ ऊपर जा सकता है, तो सातवें में कौन जाएगा, सातवें वाला द्रव्यलिंगी मुनि, पांचवे में द्रव्यलिंगी मुनि या द्रव्यलिंगी श्रावक, फिर नीचे तीसरे में जाएगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे में कौन जाएगा, औक्षणिक सम्य दृष्टि जाएगा, उसके काल में, काल पूरा होने के पहले ही अनंत अनुबंधी का उदय आ जाता है, तो वो दूसरे में जाता है और पहले में होता है, यानी ऊपर सातवां और पांचवा और नीचे सारे, तीसरा, दूसरा और पहला, यानी कोई जाने वाला डायरेक्ट तीसरे में जाए, या कोई डायरेक्ट दूसरे में जाए, कोई डायरेक्ट पहले में जाए, सम्यक्वर औक्षमिक सम्यक्व से छूट कर वो दूसरे में आया, दूसरे में आते ही अभी सम्यक्व रहा नहीं उसका और फिर पहले में चला गया, या चौथे से डायरेक्ट पहले में आने वाले को भी मिथ्यात्व का उदय हो जाता है, अभी सम्यक तो रहता नहीं है, जब तक चौथे में है तब तक ही उसको सम्यक दृष्टि कहेंगे। सासारण सम्यक तो नाम है परंतु वो सम्यक भी नहीं है, सम्यक से छूटा हुआ है, विराधना किया हुआ जी है वो, अंत में उसका सम्यक नाम है, इसे कंफ्यूज नहीं होना कि घोटाला नहीं करना कि अरे इसमें तो सम्यक लिखा है, तो ये कोई सम्यक दर्शन का कोई भेद है कि क्या, तो ये सम्यक्व से छूट गया है, जिसने सम्यक्व की विराधना की है ऐसा जीव है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि औक्षणिक काल में मिनिमम एक समय, तो दूसरा गुणस्थान का काल किसी किसी का एक समय होगा और अधिक से अधिक किसी का छह अवली होगा, यानी किसी का एक समय, किसी का दो समय, किसी का एक अवली, किसी की दो अवली, किसी की चार अवली, ऐसे अधिक से अधिक छह अवली हो सकती है, उसके पहले तो नहीं, यानी उससे ज्यादा नहीं। यानी सेकंड का असंख्या तो भाग समझ लो, हाँ वो तो मिथ्या से मिल जाएगा, क्योंकि जितना उपशम का काल बचा है ना, एक समय पहले अनंतानुबंधी का उदय आया तो दूसरे गुणस्थान का काल एक ही समय होगा, समझो दस समय पहले उसका उदय आया उपशम काल समाप्त होने के पहले, तो जितना अभी बचा हुआ उपशम काल है उतने काल तक उसका दूसरा गुणस्थान है, क्योंकि उसके बाद तो मिथ्यात्व खड़ा है वहां ऊपर, मिथ्यात्व की प्रकृति है ना, उसका उदय आने वाला है नियम से, वो रिटर्न नहीं जाएगा दूसरे से ऊपर, नहीं स्थिर करेगा उसको, नीचे ही गिरना है। चौथे गुणस्थान का गमनागमन, अब गमन अभी हमने देखा सातवे में, पांचवे में, तीसरे में, दूसरे में या पहले में होता है, और आगमन चौथे में कहाँ कहाँ से आएगा, तो छठे से, छठवे में से आएगा, पांचवे में से आएगा, और नीचे से आएगा तो तीसरे से या पहले से आएगा। अब उपशम लेने वाला जीव तथा पांचवा, छठा और सातवें गुणस्थान वाला जीव मरण होने पर अनंतर समय में यानी इमीडिएट नेक्स्ट समय में चौथे गुणस्थान में आता है। क्या कहते हैं, अभी किसी ने श्रेणी मांडी सातवें गुणस्थान के ऊपर आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, वहाँ कहीं भी उसका मरण हो सकता है। ग्यारहवें में जाते ही किसी का मरण हो सकता है, तो ग्यारहवें में से डायरेक्ट वो चौथे में आएगा, फिर वो क्रम से नहीं उतरेंगे। जैसे हम कहते हैं जिसने श्रेणी मांगी है तो आठ, नौ, दस, ग्यारह करके फिर दस, नौ, आठ, सात, छह तक आते हैं, परंतु जिसका मरण होगा कहीं पर वो डायरेक्ट चौथे में आता है। ऐसा नियम है कि चढ़ते समय आठवें के पहले भाग में मरण नहीं होता, बाकी अन्यत्र कहीं भी उनका मरण हो सकता है। उपशम श्रेणी वाले की बात है, शपथ श्रेणी वाले को होगा कि नहीं होगा मरण? हाँ, विचार करके बोलो आप। शपक यानी कौन सा? आठवां, नौवां, दसवां, बारहवां, बारहवें के बाद फिर नीचे आएगा, क्या होगा उसका? तेरहवां होगा, चौदहवां होगा, तो उसको मरण ही नहीं होगा। तो शपक श्रेणी वाले को मरण नहीं होता। उपशम श्रेणी वाले को हो सकता है कहीं श्रेणी में भी हो या नीचे गिरकर फिर कहीं हो। नहीं, मरण के बाद है, मरण ग्यारहवें में होगा और विग्रह गति के पहले समय में उसका चौथा गुणस्थान होगा। उसका उपशम काल चालू है अभी, यानी वो जब वहाँ जन्मेगा स्वर्ग में तो उसका उपशम एक सम्यक पर चल रहा है, द्वितीय उपशम सम्यक पर चल रहा है उसका, क्योंकि ग्यारहवें में मरा। अभी वो उपशम काल तो बाकी था कि जिस काल में वो दसवां, नौवां, आठवां, सातवां, छठा करता, इतना काल अभी बाकी है ना उसका। अभी तो ये चढ़ने का काल है और फिर दोबारा यहाँ तक उसका उपशम काल होगा, तभी तो वो चौथे में ही गया। तो स्वर्ग में जब वहाँ है अभी, वो जाते ही शुरू शुरू में द्वितीय उपशम सम्यक तो होगा और फिर उसका काल पूरा होते ही वो शोक्षम सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो ये कहीं भी उपशम श्रेणी में कहीं भी मरण हो, वो जीव मरकर कहाँ जाए, कौन कौन सी गति में जा सकता है मालूम? हाँ, देव गति में ही जाएगा, नियम है इसका। ये कहीं भी पांचवे से ऊपर कहीं भी मरे ना तो देव ही होगा, उस गुणस्थान में मरे थे। चौथे वाला भी होता है परंतु जिसने पहले आयु बांधी है, किसी ने नरक की बांधी है, किसी ने तिरंश की बांधी है, किसी ने मनुष्य की बांधी है, तो वहाँ तो उसको भोग भूमि का तिरंश मनुष्य होगा या नरक में जाएगा। और ऐसा नियम एक है कि जो नरक पहले जिसने आयु बांध ली है मनुष्य की, तिरंश की या नरक की, उसको पांचवा गुणस्थान प्रकट ही नहीं हो सकता, ऐसा रूल है। उतना पुरुषार्थ उसको नहीं होता। सैनिक राजा कौन गए, वो नरक की आयु बांधी थी तो क्षायिक हुआ, फिर भी चौथे गुणस्थान वाला, उसका गुणस्थान बढ़ा नहीं ऊपर। ऐसे बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग रूल्स है, तो पक्का अपने को चला पता चल जाता है कि कैसे कहाँ क्या है। ऐसे बिल्कुल फिक्स नियम है। देखो, उपशम श्रेणी वाला जीव तथा अभी पांचवे वाला मरेगा तो डायरेक्ट चौथे में आएगा नेक्स्ट समय में, छठवे में मरण होगा तो भी वो चौथे में आएगा, सातवे गुणस्थान वाला भी जीव मरण होने पर चौथे में आएगा, ऐसे कि सातवें वाला कहीं गिरकर डायरेक्ट चौथे में नहीं आ सकता। कब आएगा? अकेले उस गुणस्थान में मरण होगा तो, कोई भावलिंगी संत ध्यानावस्था में है, सातवें गुणस्थान में है और उस समय उनका मरण हुआ, तभी देव में जाएंगे, तो पहले समय से उनका चौथा गुणस्थान चालू हो जाएगा विग्रह गति से ही। जो कभी चार्ट में समझा है, चौथे गुणस्थान ऊपर जाएंगे तो द्रव्यलिंगी श्रावक पांचवे में और द्रव्यलिंगी मुनि सातवें में, और नीचे की ओर तीसरा, दूसरा और पहला, ये गमन हुआ। और आगमन कहाँ कहाँ से होता है? नीचे से आगमन कहाँ कहाँ से होगा? चौथे में पहले से होगा, दूसरे से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ चित्रा जी, दूसरे से चौथे में आ सकता है क्या? वो नियम से पहले में ही जाएगा। अब तीसरे से चौथे में आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है। अब ऊपर से कहाँ कहाँ से आता है चौथे में? देखो पांचवे से आएगा, छठवे से आएगा, और पांच से ग्यारह गुणस्थानों में कहीं पर भी मरण होगा तो इमीडिएट नेक्स्ट समय में वो चौथे गुणस्थान में आ जाएगा, क्योंकि सम्यक्त्व नहीं छूटता। गुणस्थान तो छूट जाता है उनका, परंतु सम्यक्त्व नहीं छूटता, सम्यक्त्व बना रहता है। अब पांचवें गुणस्थान का गमनागमन, गमन जो है वो द्रव्यलिंगी मुनि पांचवे से सातवें में गमन करते हैं। चढ़ते समय छठवा नहीं आता बीच में, सातवें में, और फिर बाद में वो छठवें में जाएंगे सातवें से। इसलिए क्या कहते, पांचवे से ऊपर जाएगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर अकेले एक सातवां गुणस्थान ही है। कंडीशन क्या है? द्रव्यलिंगी मुनि होना आवश्यक है, यानी प्रतिज्ञा पूर्वक जिनविष्ठा धारण करना, 28 मूलगुण पालन करने की भी प्रतिज्ञा, और वो पालन भी करना। ऐसा ही जब स्वभाव सन्मुख होता है ध्यान अवस्था में, उसको सातवां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है। तो ऊपर सातवें में और नीचे पांचवें में से नीचे की ओर जीव चौथे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, दूसरे में जा सकता है और पहले में। दूसरे में कौन जाएगा? औक्षमिक फल, औक्षमिक समय दृष्टि पांचवे से दूसरे में जा सकता है। हाँ हाँ, पहले से है तो पहले से ही। हाँ, यहाँ द्वितीय औक्षम ऊपर चढ़ के आया था। प्रथम औक्षम या द्वितीय औक्षम सम्यक्त्व के काल में ये दूसरा गुणस्थान प्रकट होता है, या तो पहले से आया था या वो फिर श्रेणी चढ़कर ऊपर से आया था। देखो ना, तो अभी अभी तो सम्यक्त्व प्राप्त किया, और ऐसे परिणाम बीच में, ऐसा कोई हम कहते ना कि हम कोई पूजा करते करते ऐसे खोटा परिणाम, कोई क्रोध का है, लोभ का, मान का कुछ आ जाता है बीच में, अरे ये कहाँ से आया? तो हो सकता है वो पहले में जाएगा, दूसरे में से पहले में जाएगा, और फिर पुरुषार्थ करेगा एक अंतर मुहूर्त में, फिर ऊपर चढ़ जाएगा। तीसरे में औक्षमिक का पूरा हो ही गया काल, पूरा होते ही क्षोक्षम होने के पहले ही वो उपशम तो पूरा हो गया, और वहां तो डायरेक्ट तीसरे का उसका उदय आया, यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, यानी क्षोक्षम समय दृष्टि होने के पहले ही उपशम सम्यक्त्व तो उसका पूर्ण हुआ, और अगले ही समय में इसका उदय आया। इसका उदय आता सम्यक प्रकृति का तो ही वो क्षोक्षम समय दृष्टि हो जाता, परंतु सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होते, क्या हुआ? सम्यक मिथ्यात्व का आया, यानी उपशम काल चालू था तब तक तो चौथे में था, और समाप्त होते ही उसका क्षोक्षम होने के बदले तीसरा गुणस्थान प्राप्त हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो क्षोक्षम समय दृष्टि है, रेगुलर जो क्षोक्षम है, यानी उपशम के बाद क्षोक्षम कर दिया, तो उसके तो तीन टुकड़ों में से मिथ्यात्व तो दंडर दबा हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं, उसका उदय है सम्यक प्रकृति का। तो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, और फिर कभी बाईचांस ऐसा उसके परिणाम बिगड़ गए कि उसको ये सम्यक प्रकृति का सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो तीसरे गुणस्थान में चला गया। यानी उपशम के बाद ही इमीडिएट होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्षोक्षम होकर फिर उसका उदय आ सकता है। हाँ, रेस थी उपशम के बाद, यानी उपशम के बाद चार रस्ते, औक्षमिक सम्यक्त्व का काल समझ लो इतना है, एक काला पूरा इतना है। तो इसमें तो पहला रास्ता कौन सा है कि एक काल पूरा होने के पहले यही अनंतानुबंधी का उदय आया और जीव दूसरे में चला गया, ये एक पॉसिबिलिटी, ये काल पूरा हो गया, काल पूरा होने के बाद यहाँ दर्शन होने की तीन प्रकृतियां पड़ी हुई है, सम्यक प्रकृति का उदय आया और ये दबी रही, तो वहाँ क्षोक्षम सम्यक तो होगा, और ये सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरा होगा, और मिथ्यात्व का उदय आया तो पहला होगा। जैसे शास्त्र में आता है कि औक्षमिक संघ में वो भी एक जीव को तो पल्ले के असंख्या बार हो सकता है, यानी कितनी बार वो गिर कर फिर ऑप्शन के साथ उसको फिर दोबारा वो समय तो प्राप्त हो सकता है, यानी पूरा जो अनादि से अनंत ये जो काल है उसका समित्व का या मिथ्या तो समय का मिथ्या तो समय चलता है, अनेक बार हो सकता है। वो तो केवल ही जानते हैं ना कितने जीव को कितने बार वो गिर गया, कितने बार वो उसने सिर्फ प्राप्त किया। और ऐसा भी कोई जीव होता है कि वो समय को प्राप्त करे और शोषण समय जैसी हो जाए और 66 सागर तक उसको बना रहे, फिर एक अंतर्मूल तक तीसरे में आए, फिर और 66 सागर कंटिन्यूस, यानी इतना लंबा काल भी हो सकता है। गिरना ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, समय तो होने के बाद बिना गिरे वो क्षोक्षम हो जाएगा, क्षायक हो जाएगा, मुक्त चला जाएगा। गिरना भी जरूरत नहीं है और गिरेगा नहीं ये भी गारंटी नहीं दे सकते। प्रत्येक जीव का अलग अलग जो अपनी योग्यता अनुसार परिणाम होते हैं अलग अलग। इसीलिए ये जो तत्व के ऊपर इतना हम जोर देते हैं ना, तत्व ज्ञान के सही निर्णय पूर्वक जो होगा उसको गिरने की चांसेस कम। अभी थोड़ा ऐसा डामाडोल होता है, समय को प्राप्त भी कर सकता है, फिर ऐसे ही किसी अन्य के सपेरे में आ जाता है, तो गुरु के पीछे जाए या अन्य कोई कोई बातें हो या कोई बीमारी हो या और कोई प्रसंग घर में ऐसा बन जाए कि उसको ऐसे वो परिणाम बिगड़ जाते हैं और फिर दोबारा मिथ्या तो नहीं चला जाता है। अब पांचवा गुणस्थान में ऊपर हमने देखा ना, ऊपर सातवें में और नीचे चौथा तीसरा दूसरा या पहले गुणस्थानों में गमन होता है, और आगमन पांचवें में आता कहाँ से है, छठवें से में आएगा, ऊपर से तो सातवें में से तो नहीं आएगा, छठवें से आएगा, और नीचे से कहाँ कहाँ से आ सकता है, अच्छा पहले से जा सकता है, दूसरे से जाएगा कि नहीं जाएगा, तीसरे से खतरी नहीं है। देखो तो तीसरे का ऐसा रूल है, ऊपर इमीडिएट एक ही स्टेप ऊपर चलता है चौथे वक्त और नीचे पहला, तो तीसरे से पांचवे में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो नीचे से अगर कोई जीव आता है तो चौथे से आएगा या पहले से आएगा। देखो तो चार, देखो पांचवे गुणस्थान गमन होता है द्रव्यलिंगी मुनि का सातवें में, और पांचवे गुणस्थान वाले का नीचे की ओर गमन है चौथे में या तीसरे में या दूसरे में या पहले में। अब मेरा ऐसा प्रश्न है, तो ये ऐसा नीचे गिरेगा तो वो अनुव्रत छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? पांचवे में रहने के लिए तो अनुव्रत की आवश्यकता थी, अनुव्रत ग्रहण पूर्वक ही वो पांचवे में गया था, तो अभी नीचे की ओर गया वो, कोई तीसरे में गया, कोई चौथे में गया, तो पांचवे वाला चौथे में गया तो अनुव्रत छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार किए है और ये गुणस्थान तो ऊपर नीचे होते भी रहते हैं। इसकी क्या बात, मुनि का भी गुणस्थान पहला हो सकता है कभी कभी और फिर वो पुरुषार्थ पूर्वक फिर ऊपर चढ़ते हैं, तो ये बाह्य त्याग जो अंगीकार किए है उसको छोड़ते नहीं है और छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं, वो तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा। तो बाह्य में जो आचार उन्होंने अंगीकार किए, प्रतिज्ञा अंगीकार किए, वे तो वैसे ही रहती है, यानी बाह्य देखने वाले को कुछ पता नहीं है इस जीव का कौन सा गुणस्थान है। अभी अभी पांचवे में था और कोई उनके परिणाम ऐसे बैठे बैठे देखने वाले तो ये शांति से बैठा है और उसके परिणाम ऐसे बिगड़ जाते हैं, मिथ्यात्व में भी आ सकता है, फिर दोबारा पुरुषार्थ करके फिर चल सकता है। तो आगमन देखो ऊपर से छठवे में जाएगा और नीचे से चौथे वाला या पहले वाला आएगा, परंतु द्रव्यलिंगी श्रावक होना आवश्यक है। अब छठवे गुणस्थान का गमनागमन, गमन ऊपर सातवें में और नीचे के सभी गुणस्थानों में हो सकता है, क्योंकि छठे सातवा छठा सातवा होता है ना, ऊपर से भी आएगा तो कहाँ से आएगा, ऊपर की ओर से कहीं आठवें से नौवें से आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, ऐसा क्रम पूर्वक ही आएगा, तो ये जंप मारकर ऊपर से एकदम नहीं आएगा छठे में, तो ऊपर से आएगा तो सातवें से, और ऊपर जाएगा तो भी सातवें में जाएगा। अब नीचे की ओर, नीचे की ओर कहाँ कहाँ जा सकता है बोलो, सब नीचे के सारे गिनाओ। छठे से पांचवे में जा सकता है, छठे से चौथे में, छठे से तीसरे, तीसरे में कौन जाएगा? हाँ मस्त, कौन सा जीव? ऑप्शन नहीं सामने, ये कंडीशन है। छठे से, सॉरी दूसरे में मैं बताना चाहती हूँ, तीसरे की बात है। छठे से तीसरे में तो सम्यक निष्ठात्व का उदय कोई भी होगा, वो औपशमिक के बाद या सौपशमिक वाला। और छठे से दूसरे में कौन आएगा? वो औपशमिक समिक। मैंने घोटाला कर दिया तीसरा और दूसरे, और पहले में भी आ सकता है। तो देखो इसका चार देखना आप, छठवे से ऊपर गमन है सातवे में, तो यहाँ द्रव्यलिंग क्यों नहीं लिया लिखा? अन्यत्र तो लिखा था ऊपर, पांचवे में तो लिखा था। हाँ छठवे में जो आया है वो सातवे से होकर ही आया है, तो वो द्रव्यलिंग और भावलिंग में दोनों सहित ही है। ख्याल में आता है ना, वही छठवे से सातवे, सातवे से छठवे ऐसा करता रहेगा। इसलिए पहले तो कंडीशन डाली थी और यहाँ नहीं लिखी है, वो जानबूझकर नहीं लिखी है। ऐसा नहीं कि छठवे में आता है फिर द्रव्यलिंग धारण करके सातवें में जाता है, ऐसी बात नहीं है। छठवे वाला द्रव्यलिंगी तो है ही, भावलिंगी भी है, इसलिए वहाँ द्रव्यलिंगी की कंडीशन नहीं लिखी है। तो नीचे की ओर देखो, पांच चार तीन दो ने, और यहाँ आगमन छठवे में कहाँ कहाँ से होता है और नीचे कहाँ से आएगा? आता ही नहीं, क्योंकि वो चढ़ने का गुणस्थान ही नहीं है। अब सातवें गुणस्थान का गमन करो। अब गमन यानी वो जाएगा कहाँ कहाँ, ऊपर कहाँ कहाँ जा सकता है, तो श्रेणी मानते हुए आठवें में, यदि श्रेणी मान लेगा तो ही वो सातवें वाला आठवें में जाएगा, अन्यथा हमेशा क्या होगा? छठा सातवा, छठा सातवा, छठा सातवा, और अन्यथा छठवें में गमन होता है। अब आगमन यानी आता कहाँ कहाँ से है, नीचे की ओर से अगर आना है तो कहाँ से आएगा? पहले वाला जाएगा कि नहीं सातवें में? जा सकता है। दूसरा, तीसरा नहीं, दूसरा तीसरा नहीं जाएगा। चौथे वाला आएगा, आ सकता है। पांचवे वाला, छठवे वाला आएगा ना? हाँ, तो दूसरा तीसरा छोड़कर नीचे से कौन कौन जाता है? पहले वाला, चौथे वाला, पांचवे वाला और छठे वाला। और ऊपर से कहाँ से आएगा? आठवें से, शपक श्रेणी वाला आएगा ना आठवें से, तो उक्षण श्रेणी वाला, क्योंकि वो तो फिर रिटर्न जर्नी करेगा। ये तो एक बार गया तो वन वे है उसका, शपक वाले का, वो दोबारा नीचे नहीं आता। और मरण होगा तो, शपक वाले का मरण होगा तो मरण ही नहीं होता। हाँ अभी एकदम पैक हो गए हमने पुनः में लिया था ना क्लास, छोटे छोटे बच्चे, आठ दस साल के बच्चे, फटाफट फटाफट कौन सा जीव कहाँ जाएगा क्या करेगा। और बड़े तो देखते रहते थे ये, इनको कैसा पता चलता, और झकझर कर देते थे। एक बार समझ में आ जाए ना तो अभी तो आसान लगता है ना, अभी गुणस्थानों की कोई डर नहीं लगेगा हाँ क्यों नहीं चलेंगे? हाँ अभी यहाँ तक आए तो जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? हाँ क्या कहते, डर गए चलो देखो यहाँ गमन देखो, ये चार्ट में पहले ऊपर से पढ़ते हैं आगमन के, वहाँ कि पहले चौथे पांचवे और छठवे में उसे होता है। पहले चौथे पांचवे से सातवे में आने वाले जीव के द्रव्यलिंगी मुनि होना आवश्यक है। छठवे गुणस्थान वाले तो स्वयं भावलिंगी मुनि है, देखो यहाँ लिखा है ना। और आठवें उपशाम गुणस्थान से गिरते समय भी आगमन होता है, तो ये चार देख लेना। देखो सातवें से ऊपर आठवां शपक और उपशमक, यानी शपक श्रेणी चढ़ने वाला और उपशम श्रेणी चढ़ने वाला दोनों, यानी या तो शपक श्रेणी में जाएगा या उपशम श्रेणी में जाएगा। तो शपक श्रेणी वाले जाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? व्यावसायिक समय देखी जाएगा और उत्तम श्रेणी करने वाले को साइक वाला भी चल सकता है या द्वितीय उपशम करने वाला चलेगा, क्योंकि सातवें में तो क्षोक्षम है उसका, फिर सातवें के जो चढ़ने वाले के पहले उसको साथी से अप्रमत कहते हैं, यानी सातवें में ही विशुद्धि उसकी बढ़ती है तब वो क्षोक्षम में से द्वितीयोक्षम हो जाता है और फिर वो आठवां नौवां वगैरह द्वितीयोक्षम समित्व के साथ उपशम श्रेणी करता है। ये यहाँ तक ख्याल में आया, सातवें तक तो अभी श्रेणी चलेंगे क्यों? हाँ दीपाली, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? अभी देखो सातवें तक तो क्षोक्षम समय दृष्टि था, अभी उसको उपशम श्रेणी चढ़नी है, तो उपशम श्रेणी के चढ़ने के पहले क्षोक्षम में से द्वितीय उपशम हो जाता है। उपशम उपशम सॉरी क्षोक्षम में क्या है उसका सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है तो इसको भी दबाएगा, तीनों प्रकृति में से किसी का उदय नहीं रहेगा तो इसको कहते निर्मलता आ गई उनको, जरा सम्यक प्रकृति सम्यत्व को तो होने देता है यानी उसको सम्यत्व में बाधा नहीं डालता परंतु फिर भी इतनी निर्मलता नहीं साइड देगी या उपशम देगी, इसलिए तीनों को दबा देता है, अभी उदय किसी का नहीं है तो फिर वो श्रेणी करता है। हाँ इसमें मैंने खास बात नहीं बताई, क्योंकि जब सम्यक प्रकृति का उदय है तो चल मल और अगाढ़ दोष आते हैं उस जीव को, वो तो केवल ही गम्य है, जैसे भी कोई चलता तो है लाठी के सहारे तो ऐसे डगमगाता है ना, ऐसे थोड़ा सूक्ष्म दोष उसमें देता है चल दोष, अगाढ़ यानी जैसे गाढ़ समय दृष्टि दृढ़ वैसा नहीं होता है समय दृष्टि सूक्ष्म वाला, तो इसलिए उसको अगाढ़ कहते हैं। चल मल और मल ऐसा भी आ जाए, अरे ये हमने स्थापना की है प्रतिदिन की, हमारा मंदिर है वो अपना नहीं है, ऐसे थोड़ी यहाँ कहीं भावना होती है ऐसे, यानी वो तो उदाहरण के तौर पर दिए, जैसे मिथ्या दृष्टि हमारा तुम्हारा करेगा वैसे तो उसकी भाव नहीं थी, तो उनको तो अरिहंत सिद्धों के प्रति तो पूर्ण आदर भाव है भक्ति भाव है, ऐसा नहीं करेगा कि मेरे मंदिर है तो मैं यहीं पर पूजा करूंगा नमस्कार करूंगा वहां मैं नमस्कार ही करूंगा, नहीं ऐसे ही बात, सूक्ष्म कोई दोष रहता है उनको, उसको कहते चलमल अगाढ़ दोष, और उसके साथ श्रेणी के परिणाम जो विशुद्ध है वो नहीं हो सकते, इसलिए क्षयोक्षम में से फिर दोबारा उपशम करता है तो उसको द्वितीय उपशम कहते हैं, तो द्वितीय उपशम होने में उसने दर्शन मोहनीय का उपशम किया है, और जब श्रेणी चढ़ेगा ग्यारहवें तक जाएगा तब उसने चारित्र मोहनी का उपशम करके वो जाएगा, तो द्वितीय उपशम और प्रथम उपशम ये किसका उपशम है वहाँ मोहनी यानी दर्शन मोहनी का, चारित्र मोहनीय तो खाली हम उपशम उपशम कहते उसमें कोई प्रथम उपशम द्वितीय उपशम बात नहीं है, वो ग्यारहवें में वो उपशम पूर्ण हो जाता है, चढ़ते समय शुरू हो जाता है उसका थोड़ा थोड़ा करके ग्यारहवें में पूर्ण उपशम हो जाता है और पूर्ण विकराल है, ये हमने सीखा था लब्धिसार में तो यही सारी बात है, नौवे गुणस्थान में भी क्या क्या कन्फ्यूजन होते हैं, हमें 150 पेजेस तो नौवे गुणस्थान के पड़े हैं, कितने अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, कितने एक अंतर्मूर्त है नौवा गुणस्थान का काल और उसमें हजारों अलग अलग अंतर्मूर्त होते हैं और हर एक में क्या बातें बनती है सारा उसमें लिखा है। देखो पहले हाँ और फिर उसका भी एक अंतर्मूर्त है, चढ़कर उतर के आया और वो उपशम का काल पूर्ण हो गया फिर वो क्षोक्षम हो जाता है, या कोई जीव चढ़कर उतर के आए और फिर साइक हो जाए पहले या बाद में और शब्द नहीं करे, क्योंकि ऐसा आता है कि जो कोई साइक हमें दृष्टि है पहले तो उपशम से भी चढ़ के फिर उतरा तो वो चढ़ते समय भी और उतरते समय भी इतनी निर्जरा हो जाती है, असंख्यात 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 गुणा निर्जरा हो जाती है और फिर इमीजिएट शपक श्रेणी चल लेता है, उपशम श्रेणी चढ़ेगा ना क्योंकि साइक समय दृष्टि है उसने दर्शन मोहनीय का क्षय किया है, परंतु चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृति उसकी बाकी है तो उसको उपशम करेगा फिर उतरेगा। तो खाली चढ़ के उतरे क्या हुआ, अरे असंख्यात निर्जरा हो गई उनकी, बहुत सारी निर्जरा होती है, हमने देखा था ना ये चारे आठवें में नौवे में दसवें में ग्यारहवें में, फिर उतरते समय भी मैंने खाली हमको क्या लगता है अरे बिचारा, अरे बिचारा नहीं, महामुनि उपशम श्रेणी में भी ऐसा पुरुषार्थ किया कि पूर्ण वितरांग हो गए। नहीं ये सादे वाले अक्षोक्षम वाले को भी निर्जरा हो गए, क्षपक श्रेणी चढ़ेगा नहीं, वो निर्जरा करते करते ऊपर चढ़ेगा, उतरते समय भी निर्जरा चालू है, ऐसा नहीं कि ऊपरते समय उतरते समय फिर दोबारा उसने छोड़ा हुआ सारा ग्रंथ, ऐसा होता नहीं, तो फिर दोबारा क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। क्योंकि क्या है कि किसी क्षायिक वाले ने आयु का बंद किया होगा और पुरुषार्थ करता है ऐसा चीज, तो ग्यारहवें तक जाके फिर वापस आता है और आयु का बंद किया है इसलिए मरण तो होगा, तो इसने किसी गुणस्थान में नीचे उतर कर होगा या श्रेणी में होगा, तो फिर जाते इस दरबार से जल्दी ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं और फिर वहां से यहाँ एक भव लेके फिर मुक जाएंगे, क्योंकि क्षायिक वाले है ना, तो क्षायिक के अधिक भव नहीं होते, अभी क्षायिक प्राप्त किया इस भव में, एक भव स्वर्ग का किया जिसको किसी को उसी भाव में मोक्ष होगा, शायद प्राप्त किया उसी भाव में मोक्ष होगा, या शायद प्राप्त करके हाँ स्वर्ग का होगा बीच में और फिर मनुष्य होकर मुक जाएंगे, या किसी ने मनुष्य आयु बांधी हो या चीरियन चाहिए तो वहां जाके फिर ऐसा गया भोग भूमि में जाते हाँ अधिक से अधिक वर्तमान पकड़ के चार भाव। देखो अभी आठवें गुणस्थान का गमनागमन देखते हैं, गमन आठवें में से नौवे में होता है, अभी यहाँ से तो सारा आसान है, ऊपर जाएंगे एक गुणस्थान ऊपर और नीचे एक गुणस्थान नीचे, और नीचे आने वाला उपशमक ही होगा, शपक को तो वन में ट्रैफिक है। हाँ दीपाली, शपक से ही चढ़ने वाले का गमन कहाँ होगा, मात्र ऊपर ऊपर ऊपर, और उपशमक का एक ऊपर और एक नीचे, तो गमन आठवें में से नौवे में होता है, उपशमन की श्रेणी उतर कर फिर से सातवें में जाता है, ऐसा कोई नहीं होता उपशमन की लोग पहले सातवें से आया आठवें में आया और फिर दोबारा सातवें में नीचे चला गया, ऐसा है पूरी श्रेणी चढ़कर उतर कर फिर सातवें में जाएगा, यानी बीच से कोई लौट नहीं सकता, ऐसा कोई जीव नहीं है कि थोड़ा ही पुरुषार्थ किया इसलिए सातवें से आठवें में गया, नौवे में गया फिर आठवें में गया फिर सात, ऐसा नहीं होता, ऊपर जाएगा तो फिर ग्यारहवें से भी जाएगा और फिर वहां से रिटर्न जाएगा, तो उतर कर फिर सातवें में जाता है और मरण होने पर चौथे में जाता है, हमने देखा था कहीं पर भी मरण होता है उपशम श्रेणी में तो मरकर वो चौथे में जाएगा, उपशमक जीव का श्रेणी चढ़ते समय आठवें के पहले भाग में मरण नहीं होता, ऐसा ये रूल है इसलिए यहाँ उसको बताया है। अभी आता कहाँ कहाँ से है, आठवें की बात है ना, आठवें का नाम क्या याद है, अपूर्वकर, तो ये कहाँ से आता है, तो सातवें सातिशय अप्रमत्त से इसका आगमन होता है, यानी सातवें गुणस्थान में ही दो भाग होते, एक स्वस्थान अप्रमत्त और एक सातिशय अप्रमत्त, हमेशा जो छठे सातवें करते रहते हैं उनका स्वस्थान अप्रमत्त कहलाता है। अभी ऐसा ही जब श्रेणी के पहले भी उसके अंदर विशुद्धि बढ़ रही है, तैयारी करते हैं ना, क्या वितरागता बढ़ती है उसकी विशुद्धि भी बढ़ती है तो सातवें वाला ही परंतु परिणाम अभी और निर्मल हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं सातिशय अप्रमत्त, तो सातिशय अप्रमत्त वाला आठवें में जाएगा और उपशम श्रेणी उतरते हुए नौवे में से भी आगमन होता है, यानी आठवें में आता कहाँ कहाँ से है, नीचे से आएगा तो सातवें से और ऊपर से उपशामक नौवा वाला शपक वाला नहीं आते में वापस, तो देखो ये चार्ट में आठवें में से ऊपर जाता है तो नौवे में जाता है, आता कहाँ से है ये शपक श्रेणी का अलग लिखा है, गमन और आगमन दोनों एक साथ लिखे हैं और यहाँ उपशम पहले पहले गुणस्थानों में हमने गमन अलग लिखा है और आगमन अलग लिखा है, अभी यहाँ श्रेणी की अपेक्षा दो डिवीजन की है, एक शपक श्रेणी का गमन आगमन दोनों एक साथ दिखाया है, तो नीचे से आएगा सातवें से और जाएगा नौवे में, और यहाँ मरण होगा कि नहीं? मरण नहीं है, चपक श्रेणी। अब ये राइट साइड में उक्षम श्रेणी का गमन और आगमन दोनों एक साथ लिखे, तो इसमें आठवें में आता कहाँ से है? तो नीचे की ओर से आएगा तो सातवें में, और ऊपर से आएगा तो नौवे से आएगा। एरोज की डायरेक्शन देखना, और जाता कहाँ कहाँ है? आउट गोइंग, तो ऊपर की ओर जाएगा तो नौवे में जाएगा, और नीचे की ओर जाएगा तो सातवें में जाएगा। ये उक्षम श्रेणी की बात है ना, इसलिए अलग ही दिखाया, शपक का चार्ट अलग किया। तो चौथे में मरणोपरांत यानी मरण के पश्चात चौथे में जाएगा, वैसे अभी नौवे गुणस्थान का, इसके आगे तो आसान है उक्षम ये श्रेणी में। तो वहाँ दोनों तरफ एरोज दिए है, क्योंकि जो ऊपर चला था ग्यारहवें में क्रम से ही आता है, ग्यारहवें तक जाएगा, ग्यारहवें से डायरेक्ट आठवें में नहीं आ सकता, ग्यारहवें से फिर देखो चढ़ते समय कहाँ गया? हाँ, उतरते समय जाएगा ही कंपलसरी। अभी मैंने बोला था ना कि आठवें से नौवे गया और नौवे से आठवें में आया, ऐसा नहीं होता। वन वे है ट्रैफिक, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यहाँ मरण भी नहीं है, यानी फिर वो दोबारा चौथे में आने का भी सवाल नहीं। अब उपशम श्रेणी वाला नीचे से आठ में आएगा, नौवे से दसवें में ही आएगा, फिर ग्यारहवा दसवा करते हुए फिर दसवें से नौवे में आएगा, और नौवे से वहीं रुकेगा नहीं, वो नीचे आठवें में जाएगा। उसका अंतर्मुख काल निश्चित है, उतने तक ही नौवे में रहेगा, फिर वो नियम से आठवें में चला जाएगा, और वहीं पर मरण अगर हो गया तो चौथे में आ जाता है। अब दसवें का, दसवें गुणस्थान में देखिए शपक श्रेणी में दसवें वाला जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा? बारहवा, पूर्ण वितराग हो जाएगा, तो दसवें से बारहवें में होता है। शपक श्रेणी में मरण नहीं होता, शपक श्रेणी में आगमन नौवे से दसवें में होता है। अब उपशम श्रेणी का अलग बताया कि दसवें से जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर ग्यारहवें में जाएगा, या श्रेणी उतरते समय दसवें से नौवे में जाएगा, और मरण होने पर चौथे में गमन होता है। अब आता कहाँ कहाँ से है? तो उपशम श्रेणी में आगमन नौवे से यानी नीचे से नौवे से दसवें में आएगा, या ऊपर से उतरते समय ग्यारहवें में से नौवे में आता है। देखो यहाँ चार्ट भी देखना, शपथ श्रेणी में दसवा गुणस्थान बताया है तो नीचे से नौवे से आता है और बारहवें में चला जाता है, और यहाँ मरण नहीं है, यानी एक ही आने का रास्ता और एक ही जाने का रास्ता। और उपशम श्रेणी में नीचे से आएगा नौवे में से, ऊपर जाएगा दसवें में आया ना, तो दसवें से ग्यारहवें में गया, ग्यारहवें का एक अंतर्मुख काल पूरा होते ही फिर दोबारा दसवें में आया, और फिर दसवें का भी काल पूरा होता है नीचे नौवे में चला जाएगा। यदि दसवें में मरण होगा तो चौथे गुणस्थान प्राप्त होगा उनको। अब ग्यारहवें गुणस्थान का गमनागमन, अभी ग्यारहवें गुणस्थान में भी दो श्रेणी होगी ना, उपशम और शपक। हाँ, कौन सी होगी? उपशम श्रेणी तो ऊपर की ओर कहाँ जाएगा? नीचे की ओर ही जाएगा, और आएगा भी कहाँ से? ऊपर। हमें एकमात्र दसवें में से होता है, तो चार्ट भी देखना तो क्लियर हो जाएगा कि दसवें में ही आना जाना है। यदि मरण होता है ग्यारहवें में तो चौथे में जाता है। अब बारहवें गुणस्थान का गमनागमन, यह मात्र क्षपक श्रेणी का गुणस्थान है, यहाँ मरण नहीं होता। गमन बारहवें में से कहाँ जाएगा? जीव तेरहवें में, फिर अरिहंत भगवान कहलाएंगे, और आगमन कहाँ से? दसवें से ही आता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, और मरण नहीं है। तो देखो बारहवें गुणस्थान में मरण नहीं होता है, नीचे से दसवें में आता है, दसवें में से और ऊपर तेरहवें में चला जाता है। ख्याल में आता है नहीं? तो बहुत फास्ट हो रहा है, तो आगे के श्रेणी की गुणस्थान तो फटाफट समझ में आता है, पहले पहले जरा जम्बलिंग होता था कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या होता है। अब तेरहवें गुणस्थान का गमनागमन, गमन तेरहवें में से कहाँ जाएगा और कहाँ से आएगा? तेरहवें में ऊपर की ओर से आएगा कि नहीं? चौदहवें में से तेरहवें में नहीं। हाँ, तो देखो तेरहवा गुणस्थान लिखा है, तेरहवे में आया और तेरहवे में से चौदहवे में चला गया। अब चौदहवे गुणस्थान का गमनागमन, गमन कहाँ होगा अभी बताओ, तिरंजग गुणस्थान आपकी सारे गुणस्थान पार हो जाएंगे और चौदहवे में आता कहाँ से, तेरहवे में से। तो चौदहवे गुणस्थान से जीव गुणस्थान आती सीधे प्रवेश बनता है और आगमन चौदहवे में तेरहवे में से होता है। ये फिगर में यही बताया, तेरहवे से चौदह और चौदह से सिद्ध होगा। गमनागमन देखने के बाद अब गुणस्थानों का काल देखेंगे। अब काल किसको कहते हैं, तो विवक्षित गुणस्थान में जीव अधिक से अधिक कितने काल तक रहता है उसे उस गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कहते हैं, और कम से कम कितना रहेगा तो उसको जघन्य काल कहते हैं। जैसे किसी गुणस्थान में कम से कम, अभी दूसरे की बात की थी हमने, कम से कम कितना काल है, एक समय, अधिक से अधिक छह अवली। तो ये जघन्य काल हुआ छह अवली, और मध्यम काल दो समय, तीन समय, चार समय, पांच समय, छह समय, ऐसे करते करते असंख्य समय, एक अवली, दो अवली, तीन अवली, फिर छह अवली तक की, छह अवली में एक समय कम, इतना सारे ये अलग अलग भेद मध्यम के हैं, उसको विकल्प भी कहते हैं, भेद। एक जगह ने बता दिया, एक उत्कृष्ट बता दिया। जैसे परीक्षा में मार्क मिले, मिनिमम किसको पास मिले और किसी को 99 मिले, तो ये जगह ने हुआ उत्कृष्ट, और बीच वाले समय वाले सबको कुछ न कुछ मिला। तो ऐसा यहाँ तो एक एक से बढ़ने वाले सारे जो विकल्प है, सारे भेद है, वो काल के भेद होंगे। वो मध्यम ने, वो मध्यम के बताते नहीं है, जगह ने बता दिया, उत्कृष्ट बता दिया, मध्यम के सारे हम समझ लेते हैं। अब सादि अनादि वगैरह शब्दों के अर्थ देखते हैं। अनादि जिसे आदि अर्थात प्रारंभ नहीं है, अन आदि, और अनंत अंत जिसका अंत नहीं है, और ये सप्लस आदि जिसे कभी ना कभी प्रारंभ होता है, और शांत यानी सप्लस अंत जिसका अंत होता है। इसमें चार प्रकार होते हैं, अनादि अनंत यानी जिसको आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है, अनादि शांत यानी जिसको आदि है, ये आदि नहीं है पर जिसका अंत आने वाला है, ऐसा कुछ मालूम है अनादि शांत। जो अनादि से था पर अभी नष्ट हो जाएगा, मिथ्या तो था। और सादि अनंत क्या हुआ, केवल ज्ञान होगा, सम्यक से भी होगा, अभी प्रकट है और आनंद काल तक रहेगा ऐसा। और सादी शांत, हाँ कोई भी पर्याय, राग द्वेष की भी ले लो आप, या हाँ इन्हीं पर्याय। अब एक जीव की अपेक्षा गुणस्थानों का काल देखते हैं। यहाँ एक जीव की अपेक्षा लिखा है, ये महत्व की बात, क्योंकि अलग अलग जीव तो मिथ्या तो गुणस्थान का काल तो कितना है सभी जीवों की अपेक्षा से, अनादि अनंत, क्योंकि कभी मिथ्या तो गुणस्थान है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा ना जो सूक्ष्म जीव वगैरह सारे लोकाकाश में एक केंद्रीय से लेकर असंध्य पंचेंद्रिय तक, एक केंद्रीय में भी इतने होते हैं, तो वे सारे मिथ्या भी जीव है, यानी वो हमेशा इस मिथ्या तो गुणस्थान में, तो इस संसार में कोई ना कोई जीव हमेशा रहेंगे रहेंगे और रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो गुणस्थान है ही नहीं, सारे मोक्ष चले गए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये जो पहले मिथ्या तो गुणस्थान का काल, ये एक एक जीव की अपेक्षा से हम देख रहे हैं। अभव्य जीव की अपेक्षा अनादि अनंत है, यानी उनको कभी सम्यक से ही प्रकट नहीं होगा, मोक्ष की तो बात दूर है। अब जो दूरानुदूर भव्य, कि जो पात्रता होने पर भी अनंत के अनंत काल के बाद भी मोक्ष नहीं पाएगा, उसके मिथ्या तो का काल भी अनादि अनंत है, यानी अनंत काल पश्चात भी इस संसार में अभव्य से अनंत गुणे भव्य जीव पड़े रहेंगे। पात्रता है परंतु तीन काल में कभी उनको सम्यक तो होने वाला नहीं है, उसको कहते दूरानुदूर भव्य। जो जीव सम्यक तो प्राप्त करता है उसके मिथ्या तो गुणस्थान का काल अनादि शांत है। सादी मिथ्या दृष्टि यानी जिसने एक बार सम्यक तो प्राप्त करके जो वापस मिथ्यात्व में आया है उसके मिथ्यात्व का काल सादी शांत है और उसका उत्कृष्ट काल किसका सादी मिथ्या दृष्टि का। मैंने एक बार मिथ्या तो समय को जाके फिर मिथ्या तो नहीं आया है, फिर उसका उत्कृष्ट काल कितना होगा तो अर्ध किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन है और जघन्य काल एक अंतर्मूर्त है। यानी समय को से मिथ्या तो में आ गया और अंतर्मूर्त में फिर समय को प्राप्त कर लिया तो उसको जघन्य काल मिथ्यात्व का यानी सारी मिथ्यात्व गुणस्थान का एक काल में आता है। पहले गुणस्थान का काल आगे बढ़ेगा, दूसरा तो आसान है। दूसरे सासाधन गुणस्थान का काल हमने देखा था अधिक से अधिक छावली और कम से कम एक समय। अब तीसरा सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का काल यथा योग्य अंतर्मूर्त है। यथा योग्य यानी जो केवली गम्य है विशिष्ट उसमें कम ज्यादा ऐसा भेद नहीं है, फिक्स उसका टाइमिंग है तो उसको कहते हैं कि उसमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं होते। यानी चौथे से गिरा तीसरे में विशिष्ट काल तक रहा उतना ही अंतर्मूर्त और फिर सेम अंतर्मूर्त सबका। अब चौथे अविरत सम्यक तो गुणस्थान का काल उत्कृष्ट काल साधिक तैतीस सागर और जघन्य काल एक अंतर्मूर्त है चौथे गुणस्थान का काल। हाँ अब पांचवे देशव्रत गुणस्थान का काल पहले जो हमने छाछ सागर देखा था वो क्षोक्षम सम्यक्त्व का देखा। क्षोक्षम सम्यक्त्व में गुणस्थान चौथा पांचवा छठा सत्र कोई भी हो सकता है उसका उत्कृष्ट काल छाछ सागर देखा था। अब ये चौथे का उत्कृष्ट काल कितना देखा है साधिक तैतीस सागर वर्ष यानी साधिक यानी कुछ अधिक हाँ थोड़ा अधिक यानी भी मनुष्य हाँ तो तैतीस सागर की देवायु और वो तैतीस सागर वाला नियम से अगले भाव में मुक्त चला जाता है इसलिए साधिक लिया उसने। पांचवे देश विरुद्ध गुणस्थान का काल उत्कृष्ट काल मनुष्य में एक करोड़ पूर्व वर्षों में से गर्भकाल सहित आठ वर्ष और एक अंतर्मूर्त कम करके शेष बचा हुआ काल उत्कृष्ट काल है। यानी कोई जीव पांचवे गुणस्थान में अधिक से अधिक रहेगा तो कितना रहेगा तो पांचवे गुणस्थान वाला जीव कौन सा होगा देवगति वाला होगा क्या नरगति वाला भोग भूमि वाला नहीं तो कर्मभूमि वाला मनुष्य हो सकता है। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ तो उसमें कर्मभूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आयु कितनी होती है एक करोड़ पूर्व। हाँ यह हम मनुष्य तिरंत की बात नहीं करेंगे तो एक करोड़ पूर्व है। अभी एक करोड़ पूर्व में उसको पांचवा गुणस्थान कब प्राप्त होगा जन्म से किसी को होगा तो चौथा हो सकता है जो सम्यक्त्व के साथ जन्मा है उसको हो सकता है। अभी कोई विदेश क्षेत्र में सम्यक्त्व के साथ जन्मने वाला जन्म से तो चौथा गुणस्थान है और आयु एक करोड़ पूर्व की है पर पांचवा गुणस्थान कब प्राप्त होगा अर्लीस्ट एट ईयर वो एट ईयर भी कब से गर्भ से वो नापना चाहे गर्भ सहित काल लेना हाँ इसीलिए यहाँ लिखा ना गर्भकाल से ही सात वर्ष लिखा है वहाँ और एक अंतर्मूर्त। हाँ वही तो आठवें साल के पश्चात ही उसका पांचवा गुणस्थान प्राप्त होगा अनुव्रत धारण करेगा वो और उसका पांचवा गुणस्थान हो सकता है केवल ज्ञान भी हो सकता है इस उम्र में। ये जो आठ साल की बात की है ना तो वो महाव्रत धारण करेगा मुनि होगा और इमीडिएट एक दो थोड़े अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करते। हाँ गर्भकाल आप गिनो और कम हो जाएगा नौ महीने और कम करो उसमें से देखो कैसे मुनि हो गए कैसा अनुपम होगा उनका तो इस उम्र में अभी तक मुनि दीक्षा लेके केवल ज्ञान भी प्राप्त करते होंगे। हाँ तुम सुंदाचार्य को पता था ना ग्यारहवें साल में मुनि हो गए थे एक अंतर्मूर्त कम करे शेष बचा हुआ काल उत्कृष्ट काल है ये मनुष्य की अपेक्षा दिया तिरियंश में ये मैक्सिमम काल गिनाने के लिए ये कहा है यानी वो जीव पांचवे में ही मरेगा तब ये क्या काल पॉसिबल है। किसी ने आगे मुनि दीक्षा ली तो पांचवे का काल नहीं गिनाएंगे ना उसको, उसकी आयु तो करोड़ों पूर्व की है। मैंने समझो पांचवे में वो 1000 साल रहा और बाद में मुनि हो गया, तो उसकी पांचवे का काल उसका 1000 वर्ष है। कोई जो ऐसा होगा कि वो पांचवे में ही पूरा जीवन बिता देगा, तो उसकी उत्कृष्ट काल पांचवे का कितना है, वो 1 करोड़ पूर्व में 8 साल कम और 1 अंतर्मूर्त कम। ये अंतर्मूर्त उसको 8वें साल में अनुव्रत ग्रहण करके अंतर्मूर्त काल में वो सम्यक को प्राप्त कर लेता है। चौथे वाला होगा वो भी 1 अंतर्मूर्त का अंतरंग में स्थिर होकर 5वें में जाए, इसलिए वो 1 अंतर्मूर्त का गिनाया। केवल ही गम्य बात है, वो एक एक समय की भी बात होगी तो गिनाएंगे। अब सीरियंस की बात है, सीरियंस में संमूर्छन सीरियंस की अपेक्षा, अभी जो गर्भस्थ सीरियंस है उसकी अपेक्षा नहीं है, संमूर्छन सीरियंस भी होते हैं, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त नहीं, वो पर्याप्त है। मनुष्य के जो संमूर्छन मनुष्य होते हैं वो तो अपर्याप्त जीव होते हैं, परंतु सीरियंसों में संमूर्छन जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ भी संमूर्छन जीव हो सकते हैं, तो उनमें उनकी अपेक्षा से 1 करोड़ पूर्वतन उनकी आयु है, उसमें से 1 अंतर्मूर्त कम करना, यानी संमूर्छन सीरियंस जन्म लेते हैं और 1 अंतर्मूर्त में ही उनको समय को प्राप्त हो सकता है, 5 अवगुण स्थान प्राप्त हो सकता है, और शेष बचा हुआ काल उत्कृष्ट काल है। देखो तो सही, मनुष्य 5वां अवगुण स्थान 8वें साल के बाद प्राप्त कर सकता है, परंतु सीरियंस जन्म के 1 अंतर्मूर्त पश्चात ही प्राप्त कर सकता है ना। छठे प्रमत्त विरत गुणस्थान का काल उत्कृष्ट काल यथा योग्य 1 अंतर्मूर्त है, उसके पश्चात नियम से 7वें में शुद्धोपयोग में जाता है, यदि न जाए तो मुनिपद छूटकर नीचे के गुणस्थानों में गमन होता है। अब जघन्य काल एक समय, ऐसा क्यों लिखा एक समय में तो 7वें में नहीं जाएगा, यह कैसे संभव है देखते हैं। कोई मुनिराज 7वें अप्रमत्त गुणस्थान में से 6वें में आए और वहाँ एक समय व्यतीत होते ही मरण को प्राप्त हुए तो उनको 6वें गुणस्थान का काल एक समय होगा। कहा है ना एक समय किस तरह से, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी भेद मध्यम काल के हैं, जो मरण की अपेक्षा से होते हैं। तो वे 6वें में आकर 10 समय में मरे तो 6वें का काल 10 समय होगा, ऐसे मरण की अपेक्षा अलग अलग भेद होंगे। मैं तो 6वें 7वें का ऐसा चलता रहता है, तो एक अंतर्मूर्त उनका यथा योग्य अंतर्मूर्त उसका काल है। 7वें अप्रमत्त गुणस्थान का काल उत्कृष्ट काल यथा योग्य 1 अंतर्मूर्त है और जघन्य काल एक समय। अब एक समय कैसे, तो 6वें से 7वें में जाने वाले या उक्षम श्रेणी के 8वें से उतरकर 7वें में जाने वाले मुनिराज का एक समय व्यतीत होते ही मरण हो जाए तो वे 7वें का जघन्य काल एक समय होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि पहले गुणस्थान से आए 7वें में और एक समय में मरे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रथमोक्षम काल है 1 अंतर्मूर्त का और उसमें मरण होता ही नहीं है, उस ओक्षम समय के 1 अंतर्मूर्त काल तक मरण ही नहीं होता, ऐसा नियम है। तो इसीलिए यहाँ 6वें से आने वाले या 8वें से आने वाले लिखे हैं, पहले से आने वाले की बात नहीं की है। 7वें का जघन्य काल एक समय का याद रहे कि यहाँ लिखा ही है, सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति के साथ 7वां गुणस्थान प्राप्त होता है, ऐसे प्रथमोक्षम सम्यक से जीव का मरण नहीं होता। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच के सभी वेद मध्यम काल के हैं, वे मरण की अपेक्षा से होते हैं। अब 8वां अपूर्व गुणस्थान का काल, तो मरण नहीं होता है नहीं, किसी को नहीं होता, चौथे 5वें 7वें कोई भी जो प्रथमोक्षम समय तो है औक्षम काल में उसका मरण नहीं होता। वो द्वितीयोक्षम वाले को होता है, हमने देखा था श्रेणी में कहीं भी हो द्वितीयोक्षम काल चल रहा है तो 11वें में मरेगा, वहाँ हो सकता है, प्रथमोक्षम में नहीं होता। पहले भाग में नहीं होता, परंतु द्वितीय ऑप्शन से ही चढ़ा है ना, तो आठवें में हो सकता है, नौवें में हो सकता है, दसवें में, ग्यारहवें में, कहीं पर भी मरण हो सकता है, परंतु जो उतरते समय तो आठवें में कहीं पर भी मरण हो सकता है। हाँ, नहीं, मेरा क्या कहना है कि द्वितीय ऑप्शन में हो सकता है, प्रथम ऑप्शन में नहीं होता, ये कंपेरिजन में। प्रथम ऑप्शन सम्यक का जो काल है वहाँ मरण नहीं होता, ये कहाँ कहाँ मरण नहीं होता हमने गिना है कि आठ दस छह ऐसे पॉइंट सब कम मरण नहीं होता जीव को। अभी आठवां अपूर्व गुणस्थान का काल उत्कृष्ट यथा योग्य अंतर्मूर्त है, परंतु जघन्य काल एक समय है, आठवें के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, ये तो पहले भी हमने देखा था, अभी भी दोबारा देखो, परंतु उपशम श्रेणी उतरते हुए नौवें में से आठवें में आते ही एक समय में मरण होगा, तो आठवें का जघन्य काल एक समय है। यहाँ भी मरण की अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट मध्यम काल के अनेक भेद होते हैं। ध्यान है, शपक श्रेणी में मरण नहीं होता, इसलिए एक शपक श्रेणी में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं होते, क्योंकि ये भेद तो मरण की अपेक्षा से है, नहीं तो उसका काल तो फिक्स है आठवें का। नौवें निवृत्ति गुणस्थान का काल उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर्मूर्त, देखो हर जगह यथा योग्य लिखा है, क्योंकि इनके आप में जो उनकी रिलेशन है कितना कम है कितना ज्यादा है, आठवें कार्य का बड़ा है काल, नौवे का और कम है, दसवें का और कम है, तो उसमें अल्प बहुत है, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो इसलिए यहाँ यथा योग्य ऐसा लिख दिया, अंतर्मूर्त है। जितने आयु शेष है करीब देखा था ना, चौधरी का काल माइनस कर दो, जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब से बड़ी हुई सारी आयु। अब नौवे गुणस्थान का देखो उत्कृष्ट काल यथायोग्य अंतर्मूर्त, जघन्य काल एक समय, उत्तम श्रेणी चढ़ते या उतरते समय नौवे में आते ही एक समय रहकर मरण हो जाए तो जघन्य काल एक समय है, मध्यम काल के सर्व भेद भी मरण की अपेक्षा से है, शपथ श्रेणी में मरण नहीं है इसलिए काल के भेद ही नहीं है। दसवें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का काल उत्कृष्ट काल यथायोग्य अंतर्मूर्त है, जघन्य काल एक समय है, उपशम श्रेणी चढ़ते या उतरते समय दसवें गुणस्थान में आकर एक समय में मरण हो जाए तो जघन्य काल एक समय है, जघन्य और उत्कृष्ट के बीच मरण की अपेक्षा से मध्यम काल के अनेक भेद होते हैं, शपथ श्रेणी में मरण नहीं होता इसलिए उसमें काल के भेद ही नहीं है। ग्यारहवें उपशांत मोह गुणस्थान का काल, यह मात्र उपशम श्रेणी का गुणस्थान है, इसका उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर्मूर्त है, जघन्य काल मरण की अपेक्षा एक समय है, मध्यम काल के सर्व भेद भी मरण की अपेक्षा से है, यदि मरण नहीं होता तो ग्यारहवें का एक फिक्स काल है, उतने तक वो ग्यारहवें में रहता है। नहीं, नीचे नीचे भी गुणस्थानों का काल ज्यादा है, नहीं सेम है, आठवें के सभी जीवों के काल सेम, नौवे का सभी का काल सेम। अच्छा, बारहवें क्षीण मोह गुणस्थान का काल यथा योग्य एक अंतर्मूर्त है, शपथ श्रेणी में मरण नहीं होता इसलिए यहाँ काल के भेद भी नहीं है। बारहवें गुणस्थान तक समझ में आया ना, अब तेरहवें संयोग केवली गुणस्थान का काल, तेरहवा गुणस्थान प्राप्त होने पर शेष जितनी आयु बाकी रही हो उतने काल में से चौदहवें गुणस्थान का काल घटा देने पर जो काल रहेगा उतना तेरहवें गुणस्थान का काल है। अभी हमने देखा था कि किसी की एक करोड़ पूर्व की आयु है और पूरी आयु उसने चौथे में बिता दी या मुनि होकर मुनि हो गए, तो कोई तेरहवा गुणस्थान प्राप्त होने के लिए कितना अभी समझो 1000 साल ही बाकी रहे और तेरहवा प्राप्त हुआ, तो वो 1000 साल में से चौदहवें का एक अंतर्मूर्त माइनस कर दो, तो इतना काल उनके तेरहवें गुणस्थान का। यहाँ जघन्य काल एक अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल किसके होता है देखते हैं, कर्मभूमि के मनुष्य को भी मुनि पद श्रेणी के गुण स्थान एवं सिद्ध पद प्राप्त हो सकता है, ये हमने पहले देखा था। भोग भूमि का जीव तो चौथे से ऊपर नहीं जा सकता, कर्मभूमि का जीव चौथे काल वाला जो है, विधि क्षेत्र वाला जो है, वो सारे गुणस्थान पार करके सिद्ध परमेश्वर बन सकता है। यहाँ के जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व वर्ष की होती है। और 1 करोड़ पूर्व कैसे निकालना, तो 1 पूर्व यानी 84 लाख वर्ष, तो 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख वर्ष इज इक्वल टू 1 पूर्व, यानी 1 पूर्व यानी 84 लाख इंटू 84 लाख, 1 करोड़ इंटू 1 पूर्व इज इक्वल टू 1 पूर्व कोटि या 1 करोड़ पूर्व। तो 84 इंटू 84 लाख की बात है, वो कितना होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष, तो गुणा करेंगे तो उतना उत्तर आता है। तेरवे का उत्कृष्ट काल 1 करोड़ पूर्व में से, अभी इसका उत्कृष्ट काल निकालेंगे किसी जीव को मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 1 करोड़ पूर्व में से गर्भकाल से 8 वर्ष और 8 अंतर्मुहूर्त बाद करके, यानी 1 अंतर्मुहूर्त में वो समझो तारीख उसने अभी 7वां प्राप्त किया और फिर 6वां 7वां करते रहे, उसके बाद 1 अंतर्मुहूर्त 8वें का 1 9वें का 1 10वें का 1 12वें का 1 और फिर 13वां गुणस्थान में, इसलिए 8 अंतर्मुहूर्त दिलाए, 8 वर्ष और 8 अंतर्मुहूर्त बात करके बैठा हुआ शेष था। उसका कारण है कि मुनि दीक्षा धारण करने के लिए कम से कम उम्र गर्भ सहित 8 वर्ष की आवश्यकता, यानी 1 अंतर्मुहूर्त वहाँ गया, उसके पश्चात 8 अंतर्मुहूर्त में जीव मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर सकता है। हाँ ना, मोक्ष तक जाने का पुरुषार्थ कर सकता है, ऐसा लिखा है, यानी वो अंतिम अंतर्मुहूर्त भी वहाँ गिनना, 1 तेरहवें का 1 14वें का छोड़ेंगे तो 6 अंतर्मुहूर्त रहते हैं। देखो 1 अंतर्मुहूर्त में तो उसने मुनि दीक्षा ली, फिर वहाँ 1 अंतर्मुहूर्त तक 6वां 7वां करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता कि 7वें में गया और तुरंत 8वें में गया, ऐसा कभी नहीं होता, हजारों बार 6वां 7वां होता रहेगा और उसमें वो अंतर्मुहूर्त में गिनाया उसको भी, और फिर 8वां 1 9वां 10वां 12वां, कोई ऐसा नहीं होता कि 13वें का 1 अंतर्मुहूर्त 14वें का 1 अंतर्मुहूर्त और मुक्त चलेगा, यानी 8 अंतर्मुहूर्त में तो मोक्ष ही चले जाते हैं। भर चक्रवर्ती के है ना, बस वही दुष्कार ली और 8 अंतर्मुहूर्त में मुक्त चले गए, मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो 14वें आयोग केवल गुणस्थान का काल, अभी अंतिम गुणस्थान है 1 अंतर्मुहूर्त जो 5 ह्रस्व स्वरों का के उच्चारण काल जितना होता है, कम या अधिक नहीं होता है, सबके 14वें गुणस्थान का काल सेम है। अभी हमने एक जीव की अपेक्षा से काल के भेद देखे, नाना जीवों की अपेक्षा से कई गुणस्थान निरंतर यानी सदा काल विद्यमान रहते हैं, अर्थात उस विवक्षित गुणस्थान में कोई भी जीव न हो ऐसा एक समय भी नहीं हो सकता। देखो क्या कहते हैं, मिथ्या तो गुणस्थान में कोई भी जीव न होगा ऐसा कभी होगा नहीं होगा, चौथे गुणस्थान में कोई जीव है ही नहीं ऐसा होगा कभी नहीं होगा, ऐसे कौन कौन से गुणस्थान है, तो 1ला है 4था है 5वां है 6था 7वां है और 13वां है। हम कहते हैं ना अभी सर्वज्ञ नहीं है, अरे सर्वज्ञ एक समय भी नहीं है ऐसा कभी नहीं होगा, यानी सिद्ध तो है ही है परंतु अरिहंत अवस्था में कोई भी जीव न हो 13वें वाले ऐसा कभी होगा ही नहीं, यानी मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला भी निरंतर विद्यमान होगा, कोई तीर्थंकर कहीं भी नहीं है ऐसा भी कभी नहीं होगा, ये धर्म का लोप हो जाएगा, अरे लोप हो जाएगा कहीं तो इसी क्षेत्र में हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं, ये तो शाश्वत रहने वाला धर्म है और उसका उद्देश्य भी हमेशा रहेगा, इससे त्रिकाल जो सर्वज्ञ भगवान है जानने वाले वो भी रहेंगे और मोक्ष मार्ग भी हमेशा चलता रहेगा। हो सकता है किसी जीव को अभी नहीं है, बाद में हो जाएगा, तो और डरने की आवश्यकता नहीं उसके लिए। हमें यहाँ की बातें देखकर ऐसा लगता है अरे क्या होगा, जैन धर्म रहा ही नहीं, कोई मुनि रहे नहीं, क्या होगा, धर्म का लोप हो जाएगा। तो यहाँ तो सारे पूरे मध्य लोक के अधिक बीच की बात चल रही है, मनुष्य लोक, तो कहीं ना कहीं ये विद्यमान है, अभी वर्तमान में विद्यमान है। तो देखो ये गुणस्थान है, पहला, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और तेरहवा। जिस प्रकार पहले निष्ठा तो गुणस्थान में जीव अनंत काल तक रहेंगे ही, यानी नाना जीवों की अपेक्षा एक ही जीव रहेगा ऐसी बात नहीं, एक जीव है वो कहीं ना कहीं मिथ्या का अभाव करके समझ को प्राप्त करके सिद्ध हो जाएगा, परंतु उसमें अन्य जीव तो हमेशा रहेंगे। उसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मोक्ष मार्ग के गुणस्थान तथा तेरहवा अरहंत अवस्था का गुणस्थान, इन गुणस्थानों का एक समय मात्र भी लोप नहीं होता, यानी मिथ्या की जो अनंत संसारी है उसका भी हमेशा सद्भाव रहेगा, मोक्ष मार्ग का भी हमेशा सद्भाव रहेगा, और जो अरहंत का और सिद्धों का जो मोक्ष जो पर्याय हम कहते हैं, अरहंतों को भाव मोक्ष और तीर्थंकर को द्रव्य भाव मोक्ष दोनों, तो ऐसी ये जो पर्याय है वो हमेशा उन गुणस्थानों में, उन पर्यायों में हमेशा कोई न कोई जीव रहेंगे ही। सर्वज्ञ का कभी अभाव नहीं होता, मोक्ष मार्ग का उपदेश कभी बंद नहीं होता, धर्म प्रकट करने वाले जीवों का कभी लोप नहीं होता। देखो ये सभी बातें, न सर्वज्ञ का लोप होता है, न मोक्ष मार्ग का उपदेश कभी रुकता है, न धर्म प्रकट करने वाले जीव का कभी लोप होता है, यानी हमेशा वो उपदेश ही देते रहेंगे और जीव नए नए जीव सबने को भी प्राप्त करते रहेंगे, मुनि भी होते रहेंगे, मोक्ष भी जाते रहेंगे, यानी ये सारा प्रोसेस हमेशा चलता है। मिथ्यात्व में से ये मोक्ष मार्ग में आते हैं और ऊपर सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अरिहंतों को भाव मोक्ष है ना, और सिद्धों को द्रव्य भाव मोक्ष दोनों है, अरिहंतों को तो चार धाति अभी बाकी है, वहाँ भाव मोक्ष उनको कहा है। और हमें समय दर्शन होता है तब कौन सा मोक्ष मिलता है, विदेह क्षेत्र में तो वे सदाकाल ही विद्यमान रहते हैं, अन्यत्र जहाँ काल के उत्तर की अवसर इनके भेद पड़ते हैं वहाँ कुछ काल के लिए कुछ क्षेत्रों में उनका लोप हो जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व की प्राप्ति और पश्चात मोक्ष प्राप्ति ऐसा प्रवाह सदाकाल विद्यमान रहता है। यह एक तरफी मार्ग यानी वन वे ट्रैफिक होने के कारण मोक्ष प्राप्ति के पश्चात पुनः संसार में और गुणस्थानों में नहीं आना पड़ता। सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे तो इस संसार में कौन रहेगा और इसकी क्या दुर्दशा होगी, ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार रुचि वाले जीव भी कायम रहेंगे। हम देखते हैं ना यहाँ किसको कितना किसको रुचि है, जिसको धर्म की रुचि है, आत्मा जानने की रुचि है, वे आते हैं और बाकी अपने अपने कामों में लगे हैं, तो वैसे रुचि वाले भी कायम रहेंगे और हमेशा आत्मा को जानने की इच्छुक भी जीव हमेशा कायम रहेंगे, नए नए जीव इसमें भी आते रहेंगे और कोई जो इसमें चलते रहेंगे उनका पहले से जो चला आ रहा है, तो उसमें से किसी को ऐसे विचार करने की फुर्सत मिल जाती है कि इसका विचार करते हैं तो वो भी इस लाइन में आ जाए। तो वही मिथ्यात भी जो जीव पहले था वही तो कभी ना कभी सम्यक्त्व में आ गया, सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, तो ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, संसार ऋषि वाले जीव भी कायम रहेंगे। अनंत काल के बाद भी सिद्ध जीवों से संसारी जीवों की संख्या अनंत गुणा ही रहेगी, ये हमेशा ये प्रोपोर्शन कायम रहेगा। हम देखते हैं ना कि अनंत अनंत काल अभी तक बीत गया और भविष्य काल अनंत अनंत उससे अनंत गुणा बाकी है, आज से भी अनंत काल के बाद जो हर छह महीने आज समय में छह सात जो मुक्त चलते चले जाते रहेंगे, तो यहाँ की कोई संख्या कम हो जाएगी ना, तो कहते कि जितने सिद्ध हो गए उसके अनंत गुणे जीव हमेशा यहाँ रहेंगे। अनंत काल के बाद भी सिद्ध जीवन से संसारी जीवन की संख्या अनंत गुणा ही रहेगी, इसलिए संसार की चिंता छोड़कर इसको किसकी चिंता है, अरे इस संसार में कौन रहेगा, तो मेरा क्या होगा इसे नहीं, तो संसार की चिंता छोड़कर स्वयं का स्वरूप समझकर स्वरूप स्थिरता द्वारा अर्थात निज आत्मा में एकाग्रता करके हम गुणस्थान आरोहण करके अल्प भवों में ही गुणस्थानातीत हो जाएंगे इस भावना के साथ तुम्हारी माँ। तो इसमें कुछ आपको भी शंका कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, अभी तो अपना हो गया विषय 103। लोग क्या कर रहा है दूसरे गुणस्थान में, जब पहले गुणस्थान में था करण लब्धि मान रहा था तभी उसने वो उपशम किया, वो उपशमित होकर पड़ा है अंदर। अब दूसरे गुणस्थान कब हुआ तो उपशम काल चल रहा है उसका, परंतु उस काल में उसके अनंतानुबंधी का उदय पहले ही आ गया, सम्यक तो प्राप्त किया। दूसरे में आने वाला कौन है? हाँ, परंतु देखो यहाँ से काल शुरू हुआ ना सम्यक्त का, उपशम सम्यक्त यहाँ से यहाँ तक है, उपशम वो कंटिन्यूस रहता सम्यक्त तो पूरा इतना काल है, अभी इतने काल तक तो सम्यक्त है ही उसका, उपशम सम्यक्त भी है उपशम काल भी है, तो ये सम्यक्त बना रहा है यहाँ तक, और अनंतानुबंधी का उदय आते ही सम्यक्त से छूट गया और दूसरे गुणस्थान में आया, तो सम्यक्त प्राप्त करने के बाद आया ना वो। तो आपका प्रश्न क्या अभी? तो अभी वो अनंत अभी तो दर्शन होने में क्या कर रहा है? वो पहले हो चुका है, उसको उदय नहीं हो रहा है अभी। अभी सम्यक तो उसको हम औक्षणिक सम्यक तो कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, है ना? यानी अभी उसको उपशम भी नहीं गिनाएंगे और उसको उदय भी नहीं गिनाएंगे, अभी दर्शन मुनि का उदय भी नहीं है, उदय नहीं है, उपशम नहीं है, क्षय नहीं है, क्षोक्षम नहीं है, वो पड़ा है अंदर सत्ता में है, तो सत्ता ये अवस्था ही है ना उसकी, उपशम अलग बात है, उपशम यानी उसको ऐसी कंडीशन की जाती है कि वो उपशमित हो, उसमें भी नहीं है। अभी जो हमारे अन्य जो कर्म है, अभी नरक गति वाला जो है, नरक गति वाला कर्म जो अभी है उदय में नहीं है, तो आपने उसका उपशम किया है क्या? कुछ नहीं किया है, वो पड़ा है अंदर। अभी हमारी 1 इंद्री जाती, 2 इंद्री जाती, 3 इंद्री जाती, 4 इंद्री जाती, सारे कर्म अंदर पड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो दर्शन मोहनी का उपशम किया हुआ है ऑलरेडी, तो अभी तो उसका जो उपशम है तो अभी उसका उपशम नहीं गिनना, न उपशम गिनना है, न उदय का है, नहीं तय भी नहीं है, और उसका क्षोक्षम भी नहीं, इसलिए उसका परिणामी भाव का है कि उसका कोई है ही नहीं यार। तभी उदय होगा, अभी एक ही समय की बात करो, अभी इस समय क्या है? अभी उसका उदय नहीं है, न उदय है न उपशम है, कुछ नहीं है, वो तो पहले हो चुका उसका। अभी तो उसने अभी पूछ रही है ना उसका, अभी वो क्या कर रहा है? अभी उपशम थोड़ी कर रहा है वो, उपशम चालू हुआ नहीं करना, उपशम करने उसने इसने करण लब्धि के परिणामों में उसने ऊपर उपशम किया, अभी यहाँ तक आया वो, अभी वो कर्म उपशमित है अभी तक। जब दूसरे गुणस्थान में आएंगे तो उसको हम उपशमित नहीं कहेंगे, कोई अवस्था नहीं उनके ऐसी के। मैंने उसका उपशम भी नहीं रहा ऐसा कहेंगे, उपशम कर भी नहीं रहा और ऊपर उपशम भी नहीं रहा ऐसा ही कहेंगे उसका, क्योंकि उसका उपशम काल भी समाप्त हो गया, दूसरे में आते उसका उपशम काल भी समाप्त हो गया, तो उसका भी उपशम भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं उसकी चार में से कोई अवस्था, समझ में आ गया ना, समय भी हो गया अपना, तो ये पुस्तक समाप्त हो गई, दीपावली की इच्छा पूर्ण हो गई। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तन हो सदा देश हो।